आप SBS उर्दू के साथ हैं।
छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते हमको घायल कर गया तेरा सितम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
क्या बात है।
ये आवाज़ है पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की। मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के वो वाहिद कोपहमा हैं जो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 को सर कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकी बुलंद चोटियों को सर करने के लिए भी स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया गया था। इस साल वो मौसम सरमा में K2 को सर करके एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। जुमा 5 फरवरी वो दिन था जब उनका अपनी टीम से आखिरी राबता हुआ था। अली सतपारा के हमरा आइसलैंड के जॉन स्नोरी, चिली के वान पाब्लो मोर और सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी थे, लेकिन ऑक्सीजन सामान में खराबी के बायस साजिद को पहाड़ की चोटी से वापस आना पड़ा। यही वो आखिरी लम्हा था जब किसी ने इन तीनों को पहमाओं को देखा था, लेकिन चंद दिन गुजरने के बावजूद भी इन को पहमाओं से अब तक कोई राबता नहीं हो सका है। साजिद सतपारा का मीडिया से गुफ्तगु में कहना था कि तेज हवाओं के बायस शायद उन तीनों के साथ कोई हादसा पेश आया होगा।
हम इस साल K2 विंटर एक्सपीडिशन 2021 में थे और हम 5 दिसंबर को इधर से निकले थे और 10-12 दिसंबर को K2 बेस कैंप पहुँचे थे और हम दो पाकिस्तानी थे, वालिद अली सतपारा और मैं, जो इस साल K2 की मुहिम जो भी पर थे। और बदकिस्मती से हम ट्राई कर रहे थे, हमारा फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट था K2 क्लाइम करने का। और अभी हम जो समेट पूछ 5 फरवरी को हमने नाइट को स्टार्ट किया था, कोई 11-12 बजे नाइट को, तो मैं बोतलनेक पे, मैं वालिद जॉन स्नोरी और दूसरा एक चिली का एक वहाँ पाब्लो, 4 क्लाइंबर्स थे और बाकी जो सारे शर्पास और यूरोपियंस थे वो भी नीचे आ रहे थे। बदकिस्मती से मैं विदाउट ऑक्सीजन था और 8200 पे पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासर हो रही है और मेरा कोई मेंटल वो भी सही नहीं था। इसलिए वालिद ने कहा कि मैंने वो एक ऑक्सीजन कैरी किया था मेंबर के लिए, उसको यूज़ करो आप, लेकिन मैं उसको यूज़ करने के लिए वो ऑक्सीजन का जो मास रेगुलेटर है उसको फिट कर रहा था कि वो लीक हो गया और मैं नीचे आ गया। बदकिस्मती से मेंटल इतना वो सही नहीं था, तो आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। और मैं कोई 12 बजे के करीब बोतलनेक से वापस आ रहा था और मैं शाम को 5:00 पर केम्प्री पे पहुँचा हूँ और वाकी टाकी पे कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुँचा हूँ बेस कैंप पे और वालिद और जो दूसरी टीम है वो समिट के लिए जा रही है। और उनके पास कोई वाकी टाकी का वो नहीं था, वाकी टाकी नहीं था और उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो गया। बाद में वो शाम को मैंने कहा कि वो वापस आएंगे उधर समिट करके, तो मैं उनको पानी शानी बना के रात को इंतज़ार करूँगा और टेंट का लाइट भी जला के रखा कि रोशनी देख के वो नीचे आ जाएंगे। और सुबह फिर वो रात भर जागा बैठा और सुबह फिर मैंने कांटेक्ट किया वो बेस कैंप वालों से कि वो नहीं पहुँचे अभी तक। तो फिर वो दूसरा वो एक बेस कैंप लीडर था, उसने कहा कि वेदर अच्छा नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है क्योंकि आप ऊपर नहीं जा सकते, बेहतर यही है कि आप थके हुए हैं कि नीचे आ जाओ, हम इधर से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करेंगे। बदकिस्मती से वो अगले दिन भी नहीं पहुँचे और उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो गया। मुझे लगता है कि वो सीमेंट करके वापसी पे आए हैं नीचे और वो विंड भी था उस नाइट को, उस तरह कुछ
मसाइल करना कितना मुश्किल है और एक कोपहमा को कौन से मसाइल पेश आते हैं, इस बारे में मैंने बात की है ऑस्ट्रेलिया की पहली खातून कोपहमा से जिन्होंने K2 को सर किया है। क्रिस्टीन बर्ग का कहना है कि K2 को सर करना दूसरे बुलंद पहाड़ों के मुकाबले में नहायत ही मुश्किल है। मौसम सरमा में इसे बहुत ही कम कोपहमाओं ने सर किया है।
the winter expedition on K2 at the moment has had a number of people unfortunately die over the recent attempts. I've obviously met Muhammad Ali Sapara on Dalagiri as recent as 2019. Very quickly, he was heading up, I was heading out. John Snorri and Pablo are regulars on many of these big mountains. And as you know, Atanas Skatov and Sergei, who I climbed with on Dalagiri also in 2019, unfortunately died recently on K2 as well. So it's a small climbing community, and you often meet these mountaineers, and sadly you have circumstances that you have on K2 at the moment, the most challenging of conditions.
का कहना है कि 2019 के दौरान उनकी मोहम्मद अली सतपारा के साथ कोह पैमाई के दौरान मुलाकात हुई थी। अली सतपारा एक बहुत ही अच्छा कोह पैमा है। इसके अलावा क्रिस की मुलाकात सर्जी मुंगेटो और एंटनस स्केटोव से भी हुई थी, जो पिछले महीने ही K2 को सर करने के दौरान पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए थे। K2 के बारे में क्रिस बर्ग का कहना है कि K2 माउंट एवरेस्ट से लंबाई में सिर्फ 250 मीटर कम है, लेकिन पहाड़ पर मौसम नहायत खौफनाक है और हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं।
K2 technically is one of the more challenging mountains. It's around 300 meters shy of Everest, but it sits further north in terms of location and weather. So it gets harsher weather off the Arctic. It's, you know, based on where it is in the Karakoram Range, the weather is treacherous. The winds on the mountains are huge, and here we have climbers attempting K2 in winter. In summer, it's one of the most challenging mountains to get good weather windows and stable weather. And here we have winter attempts in, you know, at times minus 40, minus 60, but the wind is also incredibly challenging because of the increased wind chill. But along with the technical challenges with K2, it is steep, it's unrelenting, you know, as well as being steep, you've got crevasses high up on the mountain, you've got the huge serac sitting high above Camp 4, which in 2008 claimed a number of lives. So there are many objectives and subjective hazards to deal with. Physically, it's exhausting. The reduced oxygen makes it difficult to breathe. Your organs aren't functioning as well as they would at sea level. Once you get into the death zone, in terms of the human ability to survive over time is very limited. The reduced oxygen impacts you mentally because, you know, you can become depressed, you can become angry, you don't think as clearly. Lack of oxygen impacts people in very different ways, and you really have to have experience and have everything come together to be able to be successful at that altitude. But also, even with the assistance of supplementary oxygen, you are still getting oxygen levels well below sea level.
ऑस्ट्रेलियाई कोह पैमा क्रिस बर्ग का कहना है कि किसी भी 8000 मीटर या उससे ज़्यादा लंबाई की चोटी को सर करना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। 8000 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, मौसम ख़राब होता है, जबकि जिस्म काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा दिमाग भी सही तरह काम नहीं करता और ये डेथ जोन कहलाता है।
Describe it as being at around 8,000 meters, and that's where the amount of oxygen in the atmosphere is, and don't quote me on this, but I think it's at about 25 or 30% of what oxygen you have in the atmosphere at sea level. So it's this feeling of not being able to necessarily get enough air. But you can manage your body through the acclimatization process and building your red blood cells. in order to be able to cope. But the body can only cope for so long with oxygen at those levels. Humans are not built to live at that altitude. So there's time limitations on the longer you're in the death zone, even with oxygen, you can only stay there for a short period, and it's generally a matter of days. You know, for me on K2, I was very fit, I was well prepared, and I was very acclimatized because I had been on other mountains consistently over time. So you do build up muscle memory, but backed up with also, you know, good logistics, being strong, being fit, having experience, being calm, you know, having a strategy, knowing the weather, knowing, you know, when to go, when not to go, managing risks of other people on the mountain who are around you. There's a lot involved in an expedition. In this case, we've got three experienced, very experienced mountaineers who are missing. So something dreadful has either happened to cause them, you know, not to come back. You know, as we know, hopes are fading, but while there's hope, there's a chance. So, you know, these guys that this has happened to, something exceptional clearly has happened for, you know, them to not make contact, although I do understand they may not have had communications with them. But, you know, Ali, one of the most revered mountaineers, certainly in Pakistan and in the mountaineering community, John Snorri and Pablo, you know, these were experienced guys. So we can only speculate that something dreadful has happened to cause all three of them not to come back this time.
Can you explain what is the challenge of climbing in winters? As you mentioned, the weather is different in summers. But recently there was a Nepali mission as well, and they successfully climbed. Is it a thing to climb in winters? Is it the next level challenge?
Yeah, so obviously the challenges of winter is that it's much, much colder. If you look at K2, it was the last of the 14 8,000 meter peaks to be climbed. And because it was, you know, certainly regarded as one of the most challenging, it was certainly something that people wanted to try and overcome. And to be able to do that, it needed to take a strong, coordinated team effort, which was certainly required here. And what they did, they found a short weather window, which is often all you get on K2 and in Pakistan, and they took it. And because I think they were strong, they were young, they have superior genetics, their genetic benefit in how they can build red blood cells, so they generally acclimatized better. And also their experience and their decision to work as a team. They weren't with each other on this expedition, but they knew for success they needed to come together as a team. And all of those things contributed to their success. And actually what I noticed when they reached the summit is the wonderful underfoot conditions that they had for winter. Very hard conditions, and K2 and Pakistan mountains generally in the summer have very soft conditions, unusually soft conditions up high, and often you're climbing in sugar. So although they had colder conditions, if they could tolerate those, then what they gained from that was, you know, easier, potentially, you know, inverted commas, easier conditions underfoot to help them get to the summit. So they had to have a lot of things come together in order to be successful. And to do that in winter was exceptional.
आप SBS उर्दू के साथ हैं।